नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिस्ट स्प्रे का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार की नई खेल नीति के अंतर्गत ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने दिल्ली समेत 4 राज्यों के लिए रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। यातायात पुलिस ने नागरिकों के यातायात चालान के त्वरित निपटान के लिए डिजिटल लोक अदालत एप्लीकेशन की शुरुआत की और दिल्ली पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले एक गिरोह के सरगना को गोवा से गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण मिस्ट स्प्रे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार काम कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हवाई अड्डा परिसर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जीएमआर समूह द्वारा की गई ये पहल सराहनीय है।
दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए 120 पोल्स पे मिस्ट स्प्रे लगाने का काम किया और आज ये छोटा इनिशिएटिव अपने आप में बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर रिजल्ट देने वाला है। हमने मेट्रो के माध्यम से भी जितने एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर भी इसी तरीके से मिस्ट स्प्रे लगाए हैं। क्लियर एयर, क्लीन दिल्ली और सस्टेनेबल ग्रोथ, यही हमारा टारगेट है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शाहदरा स्थित डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये संस्थान पिछले 27 से 28 वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है।
इस हॉस्पिटल में हम आने वाले समय में इसका एक्सटेंशन भी करेंगे, यहाँ लेटेस्ट मशीनरी को भी लेके आएंगे क्योंकि ये हॉस्पिटल यमुना पार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। बड़े क्षेत्र को यहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ये हॉस्पिटल कार्य करता है। लाखों जनता इस हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है, इसलिए इस हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार के तहत यहाँ पे अनेकों काम करने की सरकार की योजना है। आने वाले समय में यहाँ से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं यमुना पार के
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के सभी अस्पतालों को पूर्ण रूप से डिजिटल किया जा चुका है। इसी के साथ अब सभी मरीज का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार की नई खेल नीति के अंतर्गत ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि ओलंपिक या पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा रजत पदक विजेता को 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे विद्यार्थियों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के इस गठन के बाद दिल्ली को विकास की नई दिशा देने के साथ साथ लाखों युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है जिसे पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जारी नहीं किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अब तक लगभग 33 करोड़ रुपए की राशि खिलाड़ियों को प्रदान की गई है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मनोज।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज निरंगना यमुना में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ग्रीन एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि DDA नई परियोजनाएं ला रहा है और राजधानी में हरित क्षेत्र भी बना रहा है।
यहाँ पर सिटी के जो प्लानर्स उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सभी लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे दिल्ली को और ग्रीन किया जा सकता है, कैसे दिल्ली को और बेहतर किया जा सकता है। DDA ने बांसेरा को डेवलप किया है 2.5 साल के अंदर, असीता को डेवलप किया है, यमुना वाटिका भी 1 साल में डेवलप की गई है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। वसुदेव घाट को डेवलप किया गया है, इसके अलावा कुछ और पैचेस को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिनको ग्रीन और ब्लू एसेट्स में क्रिएट किया जाएगा।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के लिए बैठक आयोजित की। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने बताया कि यह अभियान 7 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत दिल्ली के सभी 256 संगठन मंडलों में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा, जिसके बाद सभी जिलों में और प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे। इस बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि कुल 14 विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
समिति ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 18,509 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय वाली इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में करीब 389 किलोमीटर का विस्तार होगा। इनमें कसारा मनमाड, दिल्ली अम्बाला और बल्लारी होसपेटे की तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी और इनके निर्माण के दौरान लगभग 2,65,00,000 मानव दिवस प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवाजाही सुगम होगी, माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, तेल आयात घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये सभी परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित की जा रही है। इनका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। सुपर्णा और भानु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलगाड़ियों के सामान्य डिब्बों की सफाई अब प्रथम श्रेणी के समान की जाएगी। नई दिल्ली में आज रेलवे सुधारों के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि इस उन्नत सफाई पहल के लिए अगले 6 महीने में लंबी दूरी की 80 रेलगाड़ियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर सफाई के लिए समर्पित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में लगभग 180 सुधार लागू किए गए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने रेलवे में बड़े सुधार लाने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत इस वर्ष 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू किए जाएंगे। होली के त्योहार के दौरान उत्तर रेलवे का जम्मू मंडल फरवरी और मार्च में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से नई दिल्ली तथा वाराणसी के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करेगा। ये रेलगाड़ियां मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य त्योहारी भीड़भाड़ नियंत्रित करना, टिकटों की उपलब्धता और सुरक्षित तथा आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात की प्रताप नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक पर्यटक रेलगाड़ी की शुरुआत भी की है। दिल्ली के नांगलोई में आज औषधि नियंत्रण विभाग ने दवाओं की अनुचित व्यापार के तरीकों पर लगाम लगाने के लिए एक अभियान चलाया। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार नागरिकों को नकली और निम्न गुणवत्ता की दवाओं से सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी भी सूरत में कोई भी नकली दवा नहीं बिकने दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा वहां कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ मेडिकल कंपनियां नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाई गई। नई दिल्ली में आज मुंडका ए ब्लॉक के पास एक स्टोर में आग लगने की घटना हुई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार दोपहर 3:15 पर आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। विभाग ने बताया कि अब तक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान अधिवक्ताओं को 20 फरवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे दी है। ये निर्णय यातायात जाम की आशंका को देखते हुए लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अनुरोध पर अधिवक्ताओं को वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति की अनुमति दी गई है। न्यायालय ने कहा है कि वर्चुअल उपस्थिति वैकल्पिक होगी और इस अवधि के दौरान सभी पीठ हाइब्रिड मोड में कार्य करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नागरिकों के यातायात चालानों के त्वरित निपटान के लिए एक डिजिटल लोक अदालत एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इस प्रणाली के अंतर्गत चालानों से संबंधित अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इसमें चालान का विवरण आवेदन में स्वचालित रूप से दिखाई देगा, जिससे डेटा प्रविष्टि की त्रुटियां कम होंगी और नागरिकों के लिए प्रतीक्षा समय में भी काफी कमी आएगी। वहीं वर्तमान लोक अदालत में निपटान के लिए 1,92,000 से अधिक चालान प्राप्त हुए हैं। इन चालानों और नोटिसों का निपटान एक साथ किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मोबाइल छीनने वाले एक गिरोह के सरगना को गोवा के मोपा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसके पास से 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। डाक विभाग ने देश की समृद्ध और विविध कठपुतली परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए भारत की कठपुतली विषय पर 8 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया। विभाग की सचिव वंदिता कौल ने नई दिल्ली में सांस्कृतिक जगत की कलाकारों और सदस्यों की मौजूदगी में ये टिकट जारी किया। इस अवसर पर सुश्री कौल ने कहा कि डाक टिकट राष्ट्र की विरासत के छोटे राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि इस विशेष अंक में उन अमर कहानीकारों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने पीढ़ियों से भारत की लोक कथाओं और मूल्यों को संरक्षित किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वर्ष 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य का सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि देश के वीरों का अद्वितीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान सदैव राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी श्रीमती सुषमा स्वराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुषमा स्वराज एक असाधारण नेता और करुणामयी लोक सेवक थी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, उत्कृष्ट संसदीय विरासत और मानवीय कूटनीति लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि सुषमा स्वराज ने जन कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर निर्भीक राय रखने के लिए पहचान बनाई। राजधानी में दिन भर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिस्ट स्प्रे का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार की नई खेल नीति के अंतर्गत ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने दिल्ली समेत 4 राज्यों के लिए रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। यातायात पुलिस ने नागरिकों के यातायात चालान के त्वरित निपटान के लिए डिजिटल लोक अदालत एप्लीकेशन की शुरुआत की। और दिल्ली पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले गिरोह के सरगना को गोवा से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।